ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय क्रमांक पांचवा, प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। भ्रातृणां प्राणयं भ्राता योनो तिष्ठति धर्मवेन स पुण्यबन्धुः पुरुषो मरुदुद्धि सह मोदते। भातृणाम ज्येष्ठ भाइयों का, प्राणायाम मार्ग, भ्राता आज्ञाकारी भाई, यह जो अनुतिष्ठति अनुगमन करता है, धर्मवेद धार्मिक सिद्धांतों का ज्ञाता, सह वह पुण्य बंधु हो, आध्यात्मिक पवित्र पुरुष, पुरुष मरुद्भि वायु के देवताओं के, सह साथ मोदते जीवन का आनंद भोगता है। अनुवा तथा तात्पर्य शील ऐसी भक्तिवेदांत संस्वरूपात की अनुवाद। धर्म के नियमों से अवगत भाई अपने ज्येष्ठ भाइयों के पद चिन्हों का अनुगमन करता है। अत्यधिक बड़े चढ़े होने से ऐसा पवित्र भाई मरुद जैसे देवताओं की संगति करने तथा आनंद भोगने का अवसर प्राप्त करता है। जो सभी प्रकार से अपने भाइयों के प्रति स्नेहलित है, तात्पर्य विभिन्न भौतिक संबंधों में अपने अपने विश्वास के अनुसार लोग विभिन्न लोगों में भेजे जाते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अपने भाइयों का अति आज्ञाकारी होता है उसे उनके ही जैसे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और मरुद लोग पहुंचने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्रों की दूसरी टोली को उनके अपने बड़े भाइयों का अनुगमन तथा आध्यात्मिक जगत पहुंचने के लिए सलाह दी। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो है, जैसे आप जानते हैं कि सीता ठाकुर ने उनका जो है आविर्भाव दिवस है, जो अद्वैत आचार्य उनकी पत्नी थी, तो कल से जो है आप देखते हैं कि ललिता षष्ठी है, फिर आगे राधा रानी का जन्मदिन है। तो राधा रानी के पश्चात अष्ट सखियों की में जो बाकी सात सखियां हैं उनका भी जन्मदिन होता है क्रम से। तो बरसाना में आठ सखियों के गांव है, तो संक्षिप्त में उनके बारे में मैं बताने का अंत में बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे अभी जो प्रसंग चल रहा है आप यहां देख रहे कि दक्ष जो है प्रजापति, उन्होंने पहले 10,000 पुत्रों को भेजा था जो है तपस्या करने के लिए। हाँ, जब वो लौट के नहीं आए तो उनको समझ में आ गया कि क्या हो गया, लेकिन अब की बार उन्होंने सिर्फ 1,000 पुत्र जो है प्रकट किए और उनको उन्होंने जो है फिर से तपस्या करने के लिए जो है ये नारायण सरस जहां भेजा था, तो उनको मालूम था कि नारद मुनि वहां इंतजार कर रहे। तो अभी हम लोग एक जिज्ञासा कर सकते हैं कि ये जो है दक्ष ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। आप में से कोई बता सकता है कि अभी दक्ष को मालूम है कि नारद मुनि वहां बैठा है चुपके, अभी इन 1,000 को भेजूंगा तो ये भी लौटेंगे नहीं, तो कोई बता सकता है कि ये ऐसे क्यों? दक्ष चाहते तो दूसरी जगह भेज सकते थे, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, लेकिन उन्होंने उनको वहीं क्यों भेजा? चलो अभी आप लोग थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो, बाद में मैं बताता हूं। तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे भगवद गीता का ही प्रभुपाद जी कोट करते हैं, विभिन्न भौतिक संबंधों में अपने अपने विश्वास के अनुसार लोग विभिन्न लोगों में भेजे जाते हैं। भगवद गीता 9वां अध्याय, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृवत भूतान यान्ति भूतेज मध्याजिनो अपि मां। तो इस प्रकार यहां आप देख रहे कि नारद मुनि जो है ये उन्होंने जब देखा कि दक्ष के अभी दूसरा जो है पुत्रों का बैच आया है, तो उन्होंने सोचा चलो कि आप लोग क्या करो, यहाँ रूपा जी लिखते हैं अनुगमन करने तथा आध्यात्मिक जगत पहुंचने के लिए सलाह। तो अनुगमन का मतलब है कि अपने जो है बुजुर्ग है तो उनके पद चिन्हों में चलना। तो रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं, साधु मार्ग अनुगमनम, जैसे प्रभुपाद जी ने अनुगमनम लिखा है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी जो है रूप गोस्वामी लिखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं एवं परंपरा प्राप्तम, जैसे एक भौतिक संसार में एक पिताजी है उसका कार्य उसके बच्चे कर लेते हैं, जैसे समझे एक परिवार में माता पिता डॉक्टर है तो सहज है कि बच्चे भी डॉक्टर बन जाते हैं, तो ये वो क्या करते हैं उनका अनुगमन करते हैं। लेकिन शास्त्रों में हमें क्या बताया जाता है कि महाजन एन गत स पंथ, तो हमें महाजनों के पद चिन्हों में चलना चाहिए। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे कितने महाजन है, 12, बढ़िया है। तो एक बार प्रभुपाद जी जो है कहीं विदेश में लेक्चर दे रहे थे तो किसी एक शिष्य ने कहा प्रभुपाद जी आप तो 13वें महाजन है, तो प्रभुपाद जी ने कहा बहुत धन्यवाद और आप 14वां। तो हमें मालूम होना चाहिए कि आज कलयुग है तो कलयुग में बहुत सारे महाजन है अलग अलग फील्ड में। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि आज कोई भी व्यक्ति कुछ भी आविष्कार कर देता है तो वो भी एक बड़ा महाजन बन जाता है कलयुग में। तो हर एक फील्ड में महाजन है कलयुग में, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हम धर्म का पथ अनुगमन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो महाजन है उनके पद चिन्हों में चलना चाहिए। तो अभी आप देखते कि नारद मुनि जो है उन्होंने एक बहुत ही बड़ा क्या है अंग्रेजी में कहते हैं रिस्क कहते हैं। तो नारद मुनि वो जानते थे कि मुझे जो है दक्ष जो है वो कुछ ना कुछ श्राप देने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि देखो हम मेरे गुरु जी के कहने पर मैं अमेरिका गया। तो प्रभुपाद जी आप देखते हैं कि 37 दिन जहाज में थे। अगर आप लोग अगर अनुमान करेंगे तो प्रभुपाद जी जब भी निकले थे उनका एक जन्मदिन तो समंदर में ही बीता, और प्रभुपाद जी को न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए 37 डेज। तो समंदर में जब भी प्रभुपाद जी निकले वो मौसम कौन सा था, वर्षा का मौसम, और समंदर में जो ये आते हैं जो लहरें तो वो जो है 5-5 मीटर की आती है, और प्रभुपाद जी एक कार्गो शिप में कोई आधुनिक जहाज नहीं छोटी सी जहाज में गए थे। अभी मुझे खुद एक जो है अनुभव है, तो लोग ऐसे खून से लेके भोजन सब कुछ जो है वो उल्टी कर देते हैं जहाज में, इतना बुरा असर होता है। तो जो भी है तो आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी एक ऐसी जगह गए, तो प्रभुपाद जी अपने एक मार्किणेय भागवत धर्म में कहते हैं कि अरे भगवान आप मुझे ऐसी जगह ले आए कि यहाँ सब तमो और रजोगुण में है, और अगर आप मुझे यहाँ नचाना चाहते तो आप नचाओ, मैं आपके हाथों में एक कठपुतली के समान हूं। तो आप देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए इतना रिस्क लिया है। और इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे जो शिष्य है उनके माता पिता के द्वारा भी मुझे एक श्राप मिला है इसलिए मैं एक जगह कभी कहीं रुक नहीं सकता। तो जैसे मैं बता रहा था कि प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे एक पिताजी का एक कर्तव्य होता है वैदिक संस्कृति के अनुसार, प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तात्पर्य में, प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों की दुबारी टोली को उसी स्थान पर भेजा जहां उनके पहले पुत्रों ने सिद्धि प्राप्त की थी। अपने पुत्रों की दूसरी टोली को उसी स्थान पर भेजने में वे तनिक भी नहीं हिचकिचाए, यद्यपि ये भी नारद के उपदेशों के शिकार हो सकते थे। समझ में आ रहा है? तो अभी आगे क्या है, वैदिक संस्कृति के अनुसार संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मचारी के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, यह वैदिक प्रणाली है। अतः प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों की दूसरी टोली को सांस्कृतिक प्रगति के लिए भेजा, यद्यपि वहां यह खतरा था कि नारद के उपदेशों से वे अपने बड़े भाइयों के तरह ही कहीं बुद्धिमान बन जाएं। कर्तव्यनिष्ठ पिता, अभी आपको ये समझना चाहिए कि प्रजापति दक्ष है वो एक कर्तव्यनिष्ठ पिता है। आजकल कहीं भी प्रोग्राम होता है तो माता पिता बच्चों को लेके नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है हमारे बच्चे भी भक्ति में लग जाएंगे तो ये फिर घर छोड़ देंगे। तो ये क्या हो रहा है कि हमारा एक जनरेशन गैप हो रहा है। तो यहां मैं अक्सर मैं देखता हूं मंदिर में कोई बच्चे को ले आता है तो वो बच्चा चरणामृत लेने में भी हिचकिचाता है, वो कहता है कि नहीं लेंगे, क्योंकि हम जो ज्ञान अपने बच्चों को देना चाहिए वो नहीं दे रहे। तो यहां प्रजापति प्रभुपाद जी बताते हैं कि कर्तव्यनिष्ठ पिता के रूप में उन्होंने अपने पुत्रों को जीवन की पूर्णता विषयक संस्कृति उपदेश प्राप्त करने की अनुमति देने में हिचकिचाहट नहीं की। वे उन पर निर्भर रहे कि वे भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं या भौतिक जगत में इसी विभिन्न योनि में सड़ना चाहते हैं। सभी परिस्थितियों में पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्रों को सांस्कृतिक शिक्षा दे और बाद में वे यह निश्चय करें कि वे किस मार्ग पर जाना चाहते हैं। जिम्मेदार पिताओं को चाहिए कि वे अपने पुत्रों की जो कृष्ण भावनात्मक आंदोलन के सानिध्य में सांस्कृतिक उन्नति कर रहे हैं या न करें, न रोके। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे कि जो भी बच्चे आके भक्ति में अपनी प्रगति कर रहे तो माता पिता को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। तो आज भागवतम को यही विश्राम देते हैं। तो जैसे आज जो है सीता ठाकुरानी, अद्वैत आचार्य जो है वो महाविष्णु के अवतार है, तो चैतन्य लीला में तो अद्वैत आचार्य की जो पत्नी है तो वो भी जो है सची देवी के समान ही है, उनकी भी पूजा उनकी तरह ही करनी चाहिए। तो बताया जाता है कि वो जो है नरसिंह बहादुरी के पुत्री थी और उनका जो है चैतन्य महाप्रभु के प्रति जो प्रेम था वो वात्सल्य प्रेम के समान था। तो ऐसे बताया जाता है कि जब अद्वैत आचार्य उनके अनुरोध करने पर जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए तो अद्वैत आचार्य ने अपने पत्नी को कहा कि अभी आप नवद्वीप जाओ, तो वहां जाके जगन्नाथ मिश्रा के घर में जो पुत्र ने जन्म लिया है हाँ उसको जाके आप आशीर्वाद दे के आ जाओ। तो इस प्रकार बताया जाता है कि वो जो है शांतिपुर से जब यहाँ आई नवद्वीप, तो आप देखते हैं कि गांव में जब एक बच्चा होता है तो लोग अलग अलग नाम रखते हैं। तो उन्होंने जो है निमाय पंडित को जो नाम हम लोग निमाय पंडित कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, तो ये जो है आप देखते हैं कि ये नाम सीता ठाकुरानी दिया था, क्योंकि निमाय पंडित का जो है जन्म कहाँ हुआ था कोई बता सकता है? हाँ, नीम के पेड़ के नीचे, और नीम पेड़ के नीचे कोई भूत पिशाची वगैरह नहीं होते। पुराने जमाने में एक लोगों को डर रहता था कि ये भूत पिशाची वगैरह वो बच्चे के ऊपर आक्रमण कर सकते जन्म के बाद। तो ऐसे बताया जाता है कि जैसे अद्वैत आचार्य ने उनको नवद्वीप भेजा तो वहां उन्होंने जाके बच्चे को आशीर्वाद दिया कि आप जो है यानी बड़े होके सब जो है भक्तों का जो है आप क्या करें गुण ये करें, उनका संरक्षण करें। तो आगे उल्लेख आता है कि फिर अद्वैत आचार्य जो है फिर नवद्वीप में आए, वहीं निवास करते थे। इस प्रकार जो है सची माता को मिलने के लिए प्रतिदिन जो है सीता ठाकुरानी जाती थी, और एक नवजात शिशु का किस प्रकार ये करना चाहिए पालन पोषण। आप देखते हैं कि पुराने जमाने में क्या होता था, किसी के घर में बच्चा पैदा होता था तो गांव के सब स्त्रियां जाके उस बच्चे के लिए जो है यथाशक्ति उनके पास जो भी पुराना ज्ञान है तो वो देती थी। आजकल क्या हो गया, मैटरनिटी होम, पता नहीं कितने केमिकल के द्वारा उस बच्चे को जो है ये क्लीन किया जाता है। तो ये सब कुछ जो पुराने जमाने में लोग जो उपचार करते थे तो ये तो सब भूल जाओ, आजकल लोग जो है संस्कार भी नहीं करते। कम से कम एक 20-30 साल पहले लोग गांव में बच्चों का कम से कम संस्कार तो करते थे, अन्नप्राशन संस्कार से लेके सब कुछ करते थे। लेकिन अभी कलयुग बढ़ रहा है तो लोग शहरों में लोग जो है ये बच्चों के ऊपर संस्कार नहीं करते, तो उसका विपरीत परिणाम जो है वो बच्चे के ऊपर होगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यथा योनि यथा बीजम। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि माता पिता की जो ये होती है, बच्चा जब भी वो ये करते हैं गर्भाधान संस्कार, उस समय उनकी जो मानसिक चेतना होगी तो वो बच्चा जो है उस मानसिक चेतना के अनुसार वो जन्म लेगा। तो इसलिए खास करके जो भक्ति कर रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि हमें ये नहीं करना चाहिए कि अगर हम संस्कार भक्ति में है तो नहीं कर सकते। ये तो संस्कार जो है वो सबके लिए लागू होते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं क्योंकि जो भी भक्ति के मार्ग पर है तो ऐसे लोगों को जो है संस्कार अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ आप देखते हैं कि सीता ठाकुरानी वो फिर नवद्वीप में रहती थी और प्रतिदिन जाके जो है सची माता को जो है वो निमाय पंडित का किस प्रकार उनका पालन पोषण करना चाहिए उसका वो बहुत सारा उनको ज्ञान देती थी। तो आगे उल्लेख आता है चैतन्य चरितामृत में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि फिर जैसे निमाय पंडित बड़े हो गए, फिर उन्होंने संन्यास लिया, फिर जो है बताया जाता है कि प्रति साल जो है अद्वैत आचार्य अपने परिवार के साथ जो है वो वहां जाते थे जगन्नाथपुरी। तो ऐसे बहुत सारे लीला है, लेकिन आज क्योंकि कल से जो है अष्ट सखियों का जो है जन्मदिन है तो आज मैं सिर्फ संक्षिप्त में या अष्ट सखियों का जो है गांव है हाँ उनके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। आप में से कितने लोग अष्ट सखियों के गांव गए हैं, फिर वृंदावन में रहने का कुछ फायदा नहीं। तो अगर हमें राधा रानी के निकट जाना है तो इसे आदि पुराण में भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं, वो बताते हैं कि जो व्यक्ति कहता है कि वो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, वो भक्त मेरा भक्त है जो मेरे भक्तों का भक्त है। तो कम से कम आप लोग जो है इस साल अष्ट सखियों के गांव जा सकते हैं। राधा अष्टमी के अगले दिन से जो है चित्रा सखी का जन्मदिन होता है, तो उस दिन के बाद में आगे 7 दिन जो है अलग अलग सखियों का जन्मदिन अलग अलग उनके गांवों में मनाया जाता है। तो ये सारे गांव बरसाना के निकट में ही है, तो आप लोग वहां जाके ऐसे ब्रजवासी कहते हैं कि जब तक गोपियों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो राधा रानी का सानिध्य नहीं मिलेगा, समझ रहे। तो हमें गोपियों का भी थोड़ा आशीर्वाद लेना चाहिए। तो जैसे आप देखते हैं कि स्कंद पुराण में उल्लेख आता है कि जो करोड़ों में जो गोपियां हैं उसमें 16,000 गोपियां प्रमुख है, 16 में जो है 108 प्रमुख है, 108 में 8 गोपियां प्रमुख है। तो आज मैं सिर्फ 8 गोपियों का आपको बता रहा हूं। तो ये 8 गोपियां जो है आप लोगों को सब 8 गोपियों का नाम बाह्यठ होना चाहिए। तो ऐसे गोपियों के 5 प्रकार है। तो क्या क्या है गोपियों के 5 प्रकार, सखियां, नित्य सखियां, प्राण सखियां, फिर प्रिय सखियां और परम प्रेष्ठ सखियां। तो ये अष्ट सखियां जो है ये परम श्रेष्ठ सखियों में आती है। तो चैतन्य चरितामृत में आप देखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है उन्होंने राधा रानी के 25 गुणों का उल्लेख दिया है। तो अभी आप देखते हैं कि अभी राधा रानी का तो आज हम बताएंगे नहीं, राधा रानी के बारे में आप तो राधा अष्टमी के दिन सुनेंगे। तो राधा रानी का जो जन्म है वो श्रावण मास के शुक्ल अष्टमी के दिन, उसी दिन विशाखा का भी उसी समय जन्म हुआ था। तो राधा रानी के 25 गुणों के बारे में जो है ये चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है। तो आज आपको जो है खास करके उनकी जन्म तिथि बताएंगे, कम से कम आप लोग याद रख सकते हैं। तो ललिता जी का जन्म तिथि है वो है श्रावण शुक्ल, क्या है ये इनके कैलेंडर के अनुसार, ये निम्बार्क संप्रदाय के अनुसार लेकिन हमारा जो वैष्णव का जो सिद्धांत है उसके अनुसार वो 27 दिन बड़ी है, लेकिन प्रकट लीला में सिर्फ राधा रानी से 2 दिन बड़ी है। समझ में आ रहे लोगों? उनका जो नित्य आयु है वो राधा रानी से 27 दिन बड़ी है नित्य आयु में, लेकिन प्रकट लीला में राधा रानी से 2 दिन बड़ी है। किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे आती है सुदेवी सखी। तो भद्र शुक्ला जो है प्रतिपदा, फिर आगे आता है रंग देवी सखी, भद्र शुक्ला इनका भी प्रतिपदा के दिन आता है। फिर तुंग विद्या सखी, इनका शुक्ल तृतीया। फिर इंदुलेखा, भद्र शुक्ल पंचमी। फिर उसके बाद में चंपक लता सखी, भद्र शुक्ला सप्तमी। विशाखा जी का मैंने बताया अष्टमी। और आठवीं जो सखी है चित्रा सखी, उनका है अश्विन शुक्ला तृतीया। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि राधा रानी की जो ये 8 सखियां है, तो इनका जो गांव है, आपको मैं गांव का नाम बताता हूं। तो सबसे जो बड़ी जो सखी है ललिता जी, उनका गांव है ऊंचा गांव। तो ऊंचा गांव किस पर्वत के ऊपर स्थित है, कोई बता सकता है कौन सा पर्वत है वो जिसके ऊपर ललिता जी का मंदिर है? हाँ बताओ जल्दी। अरे मैं पर्वत का नाम पूछ रहा हूं। हाँ अठोरा पर्वत, कौन सा पर्वत? हाँ वहां जो है सखीगिरी पर्वत भी है, जहां गोपियां खेलती थी, एक सखीगिरी पर्वत है, बचपन में गोपियां खेलती थी, वो पर्वत अलग है। अठोरा करके एक पर्वत है जहां ललिता जी का गांव है। फिर आगे जो है उनका अपना एक क्रम से बताएंगे, सुनहरा। अभी आप देखते कि 2 सखियां जो है वो जुड़वा बहन है, कौन बता सकते हैं 2 सखियां जुड़वा बहन? रंग देवी सुदेवी, ये दोनों जुड़वा बहन है। सुदेवी का गांव है सुनहरा पर्वत, ठीक है। रंग देवी का गांव है राखोली गांव, तो रंग देवी का जो है वो डबरा गांव है। फिर इंदुलेखा का जो है राखोली गांव है। फिर चित्रा सखी का गांव है चिकसोली। फिर आगे हम देखते हैं कि तुंग विद्या का गांव है कमई गांव। फिर करहला जो है वो चंपक लता का गांव है। विशाखा का गांव है वो है अंजनोक गांव। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि 8 सखियों के गांव है। तो अभी ललिता जी का मैं संक्षिप्त में, अभी ये सब जो डिटेल बताना इतना आसान नहीं है। तो 8 तारीख जो है यानी राधा अष्टमी के तीसरे दिन ये अष्ट सखियों का वहां गांव में एक यात्रा जाने वाला है। अगर किसी को चाहिए तो आप इंफॉर्मेशन सेंटर में रजिस्टर कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ, आज समय की कमी है, तो ललिता जी का सेवा आप देखते कि अष्ट सखियों के कुछ प्रमुख सेवा है, कुछ डिपार्टमेंट्स उनके अंडर है। तो आज मैं खास करके उनके डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा। अभी आप देखते हैं कि श्री राधा कृष्ण के सभी भावों को पूर्ण रूप से जानती है ललिता जी। कल आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, ललिता जी का कल जन्मदिन है। ललिता जी अनुराधा नाम से विख्यात है, ये मिलन तथा प्रेम कलह करवाती है। प्रेम कलह का मतलब है झगड़ा करवाना। फिर ये मिलन तथा आगे सारे सखियों की प्रमुख गुरु है। तो ललिता जी को ट्रिपल सी कहा जाता है, कंट्रोलर। हाँ राधा रानी कृष्ण को कंट्रोल करती है, ठीक है। हाँ तो राधा रानी को कौन कंट्रोल करते हैं? ललिता जी। तो कृष्ण जो है वो राधा रानी की द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। कृष्ण सिंगल सी, राधा रानी डबल सी, और ललिता जी ट्रिपल सी, जो भी थी है। कभी कभी भगवती पौर्णमासी तथा के साथ मिलकर युगल के मिलन में सहायता करती है, और श्री कृष्ण के आने पर लीलावश तटस्थ हो जाती है कि क्यों आए हो, श्याम सुंदर प्रयोजन तो बताओ। फिर ये जो है राधा रानी की पक्षपाती होने से कभी कभी श्री माधव के प्रति अपराध भी कर बैठती है। ये कभी प्रेम कलह, फिर गर्वपूर्ण वचन, उत्तर प्रत्युत्तर तथा युक्ति के समय अत्यधिक क्रोधित हो जाती है। तो कभी श्री राधा जी के भावों में अपने भावों को मिलाते हुए मुख नीचा कर लेती है। उस समय भौक्य से श्री राधा जी का अंग कांति तक इनको आच्छादित कर लेती है। ये श्री राधा जी के वर्ण की हो जाती है। इनके अधीन तांबूल सेवा है। तांबूल वाटिका की देखभाल करने वाली दासियां, किन्नरियां, सुपारी वृक्षों की सेवा करने वाली दासियां सब इनके अधीन काम करती है। ये पुष्पों के अलंकार, छत्र, शैया एकांत में परस्पर वार्तालाप करने हेतु बैठने योग्य पुष्प कक्ष का निर्माण करने में कुशल है। तो ये इनके कुछ सेवाएं हैं। फिर आगे है विशाखा सखी, ठीक है। तो इनके जो प्रमुख सेवाएं क्या है, श्री विशाखा जी नवीना है, अर्थात खिले खिले अंगों वाली है। ये सबसे अधिक मंगल स्वरूपिणी है, प्रिय नर्म सखी तथा परिपूर्ण स्वभाव है, सब कुछ करने में समर्थ है। ये अखंड एवं अव्यर्थ परामेशो देने वाली है। गोविंद के सम्मुख परिहास पूर्ण वचन बोलने में अत्यधिक समर्थ है। श्री राधा कृष्ण के हृदय के भावों को समझने में विशेष सक्षम है तथा बुद्धिपूर्वक दूती का काम करने में अत्यधिक कुशल है। नायक को किस प्रकार नायिका के निकट ले जाना, इस विषय में पालन करने वाली सब नीतियां अर्थात साम, दान तथा भेद आदि भली भांति जानती है। श्री विशाखा जी अंगों पर मनोहरी चित्रकारी करने में, माला से शिरोभूषण तैयार करने में निपुण है। ये रंगोली बनाने में, क्षण भर भी अद्भुत कविता रचाने में, शब्द जाल में फंसाने में निपुण है। ये सूर्य पूजा की सामग्री प्रस्तुत करने में विभिन्न देशों के गीत तथा ध्रुपद आदि गान तथा कविता लिखने में निपुण है। ये चित्र विचित्र कथोकथन करने में परम दक्ष है। ये वस्त्र सेवा अधिकारिणी सखियों की वन देवियों तथा पुष्प वृक्षों पर अधिकार प्राप्त सखियों की अध्यक्षा है। तो अभी ये इनके अंदर ये सब डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, श्री विशाखा सखी। फिर आती है चंपक लता। चंपक लता जो है, अभी इन सखियों के मंदिर भी है इनके गांवों में, तो 8 तारीख को अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। तो ये इनकी जो सेवाएं है, ऐसे चंपक लता जो है जी दौत्य मंत्रणा यानी वशीकरण में अभिज्ञ है। ये अपने द्वारा किए गए कार्य के उद्देश्य को सदा गोपन रखती है तथा युक्तिपूर्ण वचन कहने में सदा चतुर है। प्रतिपक्षा के अपकर्ष दिखलाकर अपने पक्ष का उत्कर्ष साधने वाली है। ये फल फूल और कंदमूल इकट्ठा करने में तथा उनके व्यवहार में विशेष पट्टु है। ये मिट्टी से बर्तन व अन्य वस्तुएं बनाने में सिद्ध हस्ता है। ये कविता कड़वा, कषाय, तीखा, खट्टा, मीठा, नमकीन, इन 6 प्रकार के रसों की परीक्षा करने तथा भोजन की विषय में जानकारी की शास्त्रों में पंडिता है। ये मिश्री द्वारा विचित्र आकार के व्यंजन प्रस्तुत करने में पट्टू है। फिर इसलिए इनका नाम मिष्ट हस्ता है। ये दूध से बनी सामग्री प्रस्तुत करने वाली सखियों की अध्यक्षा है। ये वृक्ष लता गुल्म आदि के देखभाल करने वाली गोपियों की अध्यक्षा है। तो इस प्रकार ये इनके अंदर ये डिपार्टमेंट्स हैं। फिर चित्रा सखी, तो ये चिक्सोली गांव है, बरसाना के अंदर ही आता है, तो वहां चित्रा सखी का गांव है। तो चित्रा निकुंज विहारी मंदिर, वहां जो मंदिर है उसका नाम है चित्रा निकुंज विहारी मंदिर। तो जैसे मैं बता रहा था कि हरेक गोपी के 8-8 गोपियां हैं, तो ये 8 प्रमुख गोपियां हैं, राधा रानी के अंडर है। तो हरेक गोपी ललिता जी उनके 8 सखियां हैं, फिर जो 8 सखियां हैं हरेक सखी के 8, तो इस प्रकार हरेक सखी के एक जो है जो ग्रुप है उसको कहते हैं यूथ कहा जाता है। तो चित्रा सखी के जो है डिपार्टमेंट्स है, वो अपनी अद्भुत चतुरता से सभी कार्यों को करने में दक्ष है। श्री कृष्ण और श्री राधा जी के प्रेम को नव नवयमान बनाए रखने में सखियां जिन नीति गुणों को अपनाती हैं, ये उनमें दक्ष है। भिन्न भिन्न देशों की भाषा बोलने में शहद और दूध आदि से बने पकवानों को एक ही दृष्टि से पहचानने में दक्ष है। ये कांच के बर्तन बनाने में तथा उनसे जल तरंग जैसे स्वर उत्पन्न करने में, अर्थात कांच के 7 बर्तनों में भिन्न भिन्न स्तर तक जल भरकर सारे गामा आदि स्वर लहरियां उत्पन्न करने में निपुण है। ये ज्योतिष शास्त्र में पशुओं की देखभाल करने में और रक्षा विद्या में निपुण है। वृक्षों की रक्षा और उनकी देखभाल संबंधी शास्त्रों में निपुण है। ये पानक द्रव्य पाना या शरबत प्रस्तुत करने में परम दक्ष है। दिव्य औषधि आदि एकत्र करने वाली पुष्प रहित वृक्षों की रक्षा करने वाली वनस्पति तथा विभिन्न लताओं का ध्यान रखने वाली सखियों की अध्यक्षा है। फिर आगे आता है तुंग विद्या सखी। तो इनका जो है जो गांव है वो है डबरा गांव है। तो इनके जो है जो मेन जो है कलाएं है, तुंग विद्या जी अष्टादश विद्याओं में परांगत है। तो 18 प्रकार के विद्याएं हैं। अभी आप देखते हैं कि हमारे संस्कृत में एक ग्रामर पढ़ने के लिए 12 साल लगते हैं। तो 18 प्रकार के अभी क्या क्या ये है ज्ञान है यहाँ देख लो, वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष, धातुगण, वेदांत दर्शन, मीमांस दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, पातंजल दर्शन, पुराण और धर्मशास्त्र। तो इनको ये पूरा जो है 18 विद्या है इनको पूरा मालूम है। ये युगल का मिलन करने में विशेष कुशल तथा श्री कृष्ण की जो है विश्वास पात्री है। गंधर्व विद्या की आचार्य पदवी पर आरूढ़ तुंग विद्या जी रस शास्त्र, नीति शास्त्र, नाट्य शास्त्र, नाटक आदि में परांगत है। अभी ये गंधर्व विद्या का मतलब आप लोग जानते क्या है? नृत्य। राधा रानी का एक नाम है गंधर्विका। संगीत की राग रागनियों के गान और वीणा यंत्र बजाने में परम पंडिता है। ये संधि कराने वाली सुपट्टू दुनिया सॉरी द्वितीयों की अध्यक्षा है। संगीत और रंगशाला में अधिकार प्राप्त गोपियों की अध्यक्षा है। मृदंग वाद्य और 64 कलाओं के प्रदर्शन और नृत्य करने वाली दक्ष गोपियों की अध्यक्षा है। श्री वृंदावन की विभिन्न धाराओं झरनों आदि से जल एकत्रित करने वाली सखियों की ये जो है अध्यक्षा है। तो इस प्रकार ये इनके जो है कार्य हो गए। फिर इंदुलेखा। तो इंदुलेखा का जो गांव है अंजनोक, आप देखते हैं कि अंजनोक गांव में क्या लीला हुई थी, किसी को मालूम है कृष्ण भगवान की क्या लीला हुई थी, कोई बता सकता है? हाँ हाँ, वहां एक जो है अंजन शिला है। तो एक बार कृष्ण भगवान ने जब मुरली बजाई तो राधा रानी जो है उन्होंने अपना श्रृंगार करना ही छोड़ दिया। तो ऐसे बताते हैं कि राधा रानी ने एक ही आंख में काजल लगाया था। तो जैसे राधा रानी वहां पहुंच गई तो भगवान ने एक शिला पर अपना हाथ एक रगड़ कर दूसरे आंख में जो शिला लगाया, तो वो पत्थर अभी भी अंजनो गांव में है। तो ये इंदुलेखा का गांव है। तो वहां ठाकुर जी का नाम है अंजन बिहारी। तो अभी इनके जो है प्रमुख जो है कलाएं हैं वो है सखी इंदुलेखा नाग तंत्रोक्त सभी मंत्रों को भली भांति जानती है। नाग का मतलब है ये सांप को मंत्र से मुग्ध करना, तथा इन मंत्रों का व्यवहार करने में परम निपुण है। हस्तरेखाओं को देखकर शुभ अशुभ फल कहन में निपुण है। ये विचित्र हार बनाने में निपुण है। दंत रंजन करने की कला में निपुण है। दंत रंजन का मतलब है कि आजकल के डॉक्टर तो दांत निकालने में निपुण है, पुराने जमाने में क्या होता था कि दांत को अलग अलग जो है रंग दिए जाते थे दांत, आज ये मेडिकल साइंस में किसी को मालूम नहीं। आजकल कुछ दांत में कुछ पर्ल्स करके लगाते हैं, होल बना के दांतों में लोग थोड़े मोती वगैरह लगा लेते हैं दिखाने के लिए। लेकिन एक ऐसी विद्या है जो 64 कला में एक विद्या आती है, जिसमें दंत रंजन का मतलब है, जैसे आजकल लोग आप देखते हैं कि अपने बाल अलग अलग रंग के कर लेते हैं, तो ऐसे दांतों को भी हम अलग अलग रंग दे सकते हैं। तो ये आज की दुनिया में किसी को ये ज्ञान नहीं है। सब प्रकार के रत्नों की परीक्षा करने में निपुण, पट डोर आदि गुंथन में निपुण। पट डोर जानते हैं आप लोग, ये जो हम लोग डेकोरेशन करते हैं, ये श्री राधा कृष्ण एक दूसरे की प्रति अनुराग उत्पन्न कराकर परमोत्कृष्ट सौभाग्य का विस्तार करती है। संदेश ले जाने वाली सखियां तथा रहस्यपूर्ण वार्ताओं को जानने वाली गोपियों की अध्यक्षा है। अलंकार वेश रचना तथा कोष रक्षा में नियुक्त सखियों की अध्यक्षा है। ये श्री वृंदावन के सभी रमणीय स्थानों का अधिकार प्राप्त करने वाली सखियों की अध्यक्षा है। हाँ, अभी रंग देवी और सुदेवी ये जुड़वा बहन है, और इनका जो विवाह हुआ था अभी किसी को मालूम है, जो वृंदावन के राधा रानी और उनके जो गोपियां हैं, और सारे गोपियों का शादी किस गांव में हुआ था, कहां हुआ था उनका शादी? थोड़े लोग आज के जमाने में उसको जाव कहते हैं, तो ऐसे जावट करके गांव है नंदगांव में। अगर आप नंदगांव जाएंगे कोकिला वन, हाँ थोड़े लोग जाते हैं वहां शनिदेव का दर्शन करने के लिए। हाँ, उसके अपोजिट साइड में राधा रानी का जहां विवाह हुआ था, तो वहां ललिता विशाखा सारे 8 सखियों का भी वहीं विवाह हुआ था। तो रंग देवी सुदेवी उनका जो है शादी 2 जुड़वा ग्वाले थे उनके साथ, जो है वक्रसेन गोप उनके साथ इनका शादी हुआ था, और वक्रसेन के जो छोटे भाई थे उनके साथ सुदेवी का विवाह हुआ था। तो अभी सुदेवी रंग देवी के जो है जो मेन उनके जो है जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स है, रंग देवी जो सदैव उत्तुंगा अर्थात गौरव में उन्मत्त होकर हाव भाव और इंगित की तंग तरंगिनी रूपिणी है। ये संकेत वाक्यों के नाना रूप को छल पूर्वक प्रस्तुत करने वाली है। तो ये कला है संकेत से बात करना, अपनी तपस्या द्वारा श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाला मंत्र प्राप्त किया है। अंगराग तथा गंध युक्त वस्तुओं को लगाने की दायित्वपूर्ण सेवा को प्राप्त करने वाली है। अभी अंगराग जानते हैं आप लोग क्या होता है, आजकल साबुन जानते हैं तो, लेकिन अंगराग का मतलब है एक प्रकार का शरीर को साफ करने के लिए जो है पाउडर है। फिर धूपदान शील काल और अग्नि प्रज्वलन ग्रीष्म काल में चामर व्यंजन की सेवा में संलग्न दासियों की अध्यक्षा है। जंगल में विचरण करने वाले सिंह और मृग आदि पशुओं पर नजर रखने जैसे सेवा कार्यों में व्यस्त दासियों के अध्यक्षा है। तो ये रंग देवी का ये हो गया। फिर सुदेवी इनका मंदिर है, सुदेवी निकुंज विहारी मंदिर, इनका गांव है सुनहरा गांव, तो इनका भी मंदिर है एक पर्वत के ऊपर स्थित है, इनका जो है मंदिर भी एक पर्वत के ऊपर स्थित है। तो ये एक ही गोपी का गांव है जो राजस्थान में आता है, राजस्थान के अंदर एक आधा किलोमीटर। तो जब भी हम लोग बरसाना से ऊंचा गांव जाते हैं, ऊंचा गांव से कामेवन की तरफ जाते हैं, तो राजस्थान का बॉर्डर आता है, तो वहां अगर आप देखते हैं कि ये जो गांव आता है खास करके सुनहरा गांव, उसके बगल में एक कदम्ब खंडी है, ये वहां भी भगवान की बहुत अच्छी लीलाएं हुई है। तो वहां एक जमाने में ऐसे बताया जाता है कि नागा बाबा भी रहते थे, तो ऐसे एक नागा बाबा थे, बताया जाता है कि वो प्रतिदिन राधा कृष्ण के लिए फूल चुनते थे। तो उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, बड़े केश थे, तो एक बार वो क्या कर रहे थे, फूल चुन रहे थे, तो एक लता में क्या हो गया कि उनकी जो है उसके कांटों से पूरी दाढ़ी और उनके सर के बाल पूरे फंस गए, तो बेचारे वहीं लॉकअप हो गए। तो अभी कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे बताया था कि इंद्र आए अपने पत्नी के साथ, कुछ नहीं हुआ। शिवजी पार्वती आए, फिर ऐसे बताया था कि विष्णु भगवान भी आए महालक्ष्मी के साथ, कुछ नहीं हुआ। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने भी छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं जिनकी आराधना करता हूँ वो आएंगे तो हो सकता है मैं छूट सकता हूँ, तो अंत में राधा रानी ने आके उनको उसमें से छुड़ाया। तो ये कदम खंडी जो है वो ये अंजनोक के बगल में आता है, ना अंजनोक नहीं, ये अबे सुनहरा का गांव के बगल में आता है। तो सुदेवी जो है, इनके जो है कलाएं हैं, ये निरंतर अपनी प्रिय सखी श्री राधा के निकट रहती है, तथा अपने केश संस्कार, नेत्रों में अंजन लगाना तथा अंग सहावन आदि सेवाएं करती है। ये शुक सारी तोता मैना के श्री राधा कृष्ण को गुण की शिक्षा प्रदान करने में सुदक्ष है। तो अब आप देखते हैं कि राधा कृष्ण के लीला में ये जो है खास करके पोपट है, जो इनके बहुत सारे लीलाएं हैं, तो इसमें वो दक्ष है। नौका के खेल अर्थात नौका के गहरे पानी में जाने में अथवा तेजी से नौका चलाने वाले व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा इत्यादि करने में परम सुदक्ष है। शुगन शास्त्र अर्थात ज्योतिष शास्त्र में अंतर्गत शुभ और अशुभ चिन्हों की पद्धति को जानने में निपुण है। पशु पक्षियों की भाषा समझने में निपुण है। तेल मर्दन करने में अति कुशल है। चंद्रोदय के समय खिलने वाले पुष्पों को पहचानने में निपुण है। अग्नि विद्या में निपुण है अर्थात सभी अवस्था में अग्नि प्रज्वलित रखने अति शाबाजी तथा रोशन रोशनी की व्यवस्था करने में निपुण है। अपने अनुगत सखियों को कुल्ला के लिए पत्तों के द्वारा बनाए जाने वाले पीकदान और पुष्पों द्वारा बनाए जाने वाले तकिए तथा गद्दों को प्रस्तुत करने में ये जो है पट्टू है। तो इस प्रकार ये जो है सुदेवी, उनके कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है लक्षण आपको बताएं। तो अभी आप देखते हैं कि भगवान की जो प्रमुख लीला है गौर लीला और कृष्ण लीला। तो अगर आप देखेंगे कि गौर लीला में ये आठ सखियां, तो ये लोग जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी आए हैं। अभी आप देखते हैं कि जो आठ जो गोपियां हैं और मंजरियां हैं, तो वो लोग भी जो है पुरुष के रूप में आए थे गौर लीला में। अभी आप सुदेवी का एक उदाहरण ले लो, तो सुदेवी जो है वो आप देखते हैं कि गौर लीला में वसुदेव घोष है, ठीक है, और गौर लीला में उनका जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी, वो जो है गौर लीला में वसुदेव घोष है, वो मंजरी है, सहायक मंजरी, सहायक मंजरी जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और गौर लीला में है वसुदेव घोष। तो अभी इतना समय नहीं कि मैं पूरा सबका बताऊंगा। तो एक नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक बहुत अच्छा भजन है, तो ये अष्ट सखियों के उनके ऊपर है, तो वो एक भजन हम लोग गा लेते हैं। तो समबड़ी कैन प्ले करता थोड़ा छोटा सा भजन है। ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ब्रजवासियों की स्तुति की है, तो इस भजन को हम लोग गा लेते हैं। तो आप लोग मेरे पीछे इस भजन को दोहराना।
जय जय ब्रजवासी श्रेष्ठ नंदराज, जय जय ब्रजवासी श्रेष्ठ नंद, जय जय ब्रजवासी श्रेष्ठ नंदराज, जय जय ब्रजवासी श्रेष्ठ नंदराज, जय जय ब्रजेश्वरी श्रेष्ठ गोपी माज, जय जय ब्रजेश्वरी
जय जय रो
नंदन बलराम जय जय रोहिणी नंदन जय जय राधा कृष्ण स्वयं रस धाम जय जय राधा कृष्ण जय जय राधा सखी ललिता सुंदरी जय जय राधा सखी सखीरा पारम श्रेष्ठ रूपे मधुरी सखीरा पारम जय जय श्री विशाखा चंपकलतिका जय जय रंगदेवी सुदेवी तुंग विद्या इंदुलेका रंगदेवी सु जय जय राधानुजा अनंग मंजरी जय जय राधा त्रिभुवन जिनी यार अंगेर मधु जय जय पौर्णमासी बलियोग माया जय जय राधा कृष्ण लीला करान इनि आच्छदिया राधा कृष्ण जय जय वृंदा देवी कृष्ण प्रियतमा जय जय वीरा सखी सर्व मनोरमा जय 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 रत्न मंडप रत्न सिंहस जय जय राधा कृष्ण संगे गोपी गण जय जय सुन सुन रे भाई करित प्रार्थना ब्रजे राधा कृष्ण सेवा कर भव छाड़ी अन्य कर्म छाड़ी असकाल पाने छाड़ी अन्य का व्रजे राधा कृष्ण सेवा कर भव इह सब लीलास्ताने एकरे स्मरण इह सब लीला जन्मे जन्मे शिरे धरो तन रचर श्री गुरु वैष्णव पद पद्मकारिया श्री गुरु वैष्णव नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम जय जय ब्रजवासी श्रेष्ठ नंदरा जय जय ब्रज जय जय ब्रजेश्वरी श्रेष्ठ गोपी मा जय जय
पड़ोसी अष्ट गोपी संग वृंद की। हाँ, तो जैसे आज सीता ठाकुरानी का जन्मदिन है तो कृष्ण लीला में मैंने जानकर नहीं बताया, कोई बता सकता है कि उनका कृष्ण लीला में क्या योगदान है, कोई बता सकता है? हाँ जी, कृष्ण लीला में वो क्या है? यशोदा माई, हाँ पौर्णमासी, बराबर। आप देखते हैं कि पौर्णमासी जो है उनके द्वारा ही राधा कृष्ण के लीलाओं का आयोजन किया जाता है। तो राधा कृष्ण का जो अष्टकलीय लीला होता है, हालांकि कृष्ण भगवान का जब शादी भी होना था राधा रानी के साथ, तो ये पौर्णमासी ने उसका पलट दिया था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर राधा कृष्ण का अगर विवाह होगा तो ऐसे आचार्य बताते हैं शादी के बाद में धीरे धीरे पति पत्नी का प्रेम धीरे धीरे वो घट जाता है, तो राधा कृष्ण का ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया था कि राधा रानी का विवाह कृष्ण के जो है छाया है अभिमान्यु उनके उनके पास करवाया था। तो इसमें ये पौर्णमासी का योगदान था। तो जो है सीता ठाकुरानी जो है वो वृंदावन के लीला में पौर्णमासी है। हरे कृष्ण। तो लगभग समय हो गया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्लोक रूपात के जय। हरे कृष्ण।